गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
परमात्मा कहते हैं कि मां तो आखिरी सांस तक अपने बच्चे की मृत्यु पर वो पर्दा नहीं डाल सकती, क्योंकि उसको गर्भ से लेकर उसकी मृत्यु तक की सारी जानकारी होती है और बहुत निकट से होती है। और बहन रोवे 10 मासा और 13 दिन तेरी त्रिया रोवे फेर करे गर्भासा। गुणात्मा परमात्मा की अमृत ज्ञान से परिचित होने के बाद फिर ये बातें हमारी आंखें खुल गई, फिर हम प्रत्येक घटना पर ध्यान रखने लगे। एक व्यक्ति था और उसकी मृत्यु होगी युवा उम्र में। अब वो उसकी सारा हाहाकार मच गई, बुरा हाल हो गया। तो उसकी पहले उसकी पत्नी जब आई वह बहुत बुरी तरह रो रही थी, हाहाकार मचा रही थी, और 15-20 दिन वो वहां जदास था, सर्विस करता था, वो वहां भी एक क्लर्क था। उसके ब्लड कैंसर होगी और 2 महीना के अंदर उसकी मृत्यु होगी। तो उसके अकाउंट का कराने वाई जब तक बुरा हाल था, रो रही थी, और 21 दिन के बाद आई तो सारा सिंदूर शिंगार ला रही, सारी श्रृंगार कर रही, अपने देवर के साथ उसका संपर्क कर दिया। तो परमात्मा कहते हैं 13 दिन त्रित्रिया रोए, और फिर उस दिन आश्चर्य खूब कोई दुख नहीं उसको। 13 दिन त्रित्रिया रोए फिर करे गर्भासा। फिर परमात्मा कहते हैं आगे क्या होगा, अब तो तुम इस परिवार को अपना मान के और कति यहां जचे बैठे हो, और जिस दिन यह मृत्यु हो जाएगी, जब परमात्मा क्या बताते हैं, खिड़की दे दे रोएगी एक पशुरता, जब तू चल लेगी अकेली, यू ना चल तेरी गेली सांग जिसने तू अपना मान रहा है, जो कह टक्कर मार के पछाड़ खाखा रोएगी जब तुम अकेला जाना होगा यार से। तो अकेला ना जाकर के आप परमात्मा की भक्ति करो, परमात्मा आपको ऐसे तरीके से ले जाएगा आपको पता भी नहीं चला तुम मर गए या सत्संग में जाओ हो, आपको याद भी को ना होगा कि हम मर चुके हैं। और जो भक्ति नहीं करते उनको मरने से पहले ही सताना शुरू कर देते हैं, यम के दूत ऐसी भयंकर आकृतियां दिखेंगी, किधर जाखी में गए किधर कितने गए, वो कुएं कलेजा फट जाए उसका। और परमात्मा के भक्त को स्वयं परमेश्वर आएंगे और अपने दास के रूप में और ऐसे ले जाएंगे जैसे कोई सत्संग में जा रहे हों, और फिर वहां पहुंच जाएंगे जहां ऐसा लगेगा यहां समागम हो रहा है। अब क्या बताते हैं परमात्मा इस काल के दूतों की भूल भुलैया, वहां तो फूक दिया उधर उसका अकाउंट हो रहा है, वो अपने कर्माधार पर जैसा भी उसका संस्कार है, मनुष्य बनना है तो मनुष्य का जन्म ले लेगा, या भूत प्रेत की योनि प्राप्त करनी है भूत बनकर धक्के खाओगा, या उसने कोई गधे कुत्ते की योनि में जाना तो वहां चला जाओगा। और पीछे से फिर उसका देखो कि सिलसिला शुरू होता है। गरीबदास साहब जी कह रहे हैं परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से ही कि पुराण उठा के पंडित आए और पीछे गरुड़ पढ़ाई। अब कहते हैं परमात्मा वो तो जाने वाला तो जा चुका है, अब गरुड़ पुराण का पाठ कराते हैं उसकी मृत्यु के उपलक्ष में। अब परमेश्वर कहते हैं कि तुमने गरुड़ उनको पहले सुनानी थी गरुड़ पुराण का पाठ, उसके जीते जी सुनाना था, क्योंकि गरुड़ पुराण के अंदर लिखा है कि जो व्यक्ति धर्म पूर्ण नहीं करता, साधना ठीक नहीं करता, मृत्यु के उपरांत यम के दूत उसको ले जाते हैं ऊपर, उनको ऐसे स्थानों से जाता है भयंकर तपती हुई जमीन होती है और नंगे पैर होते हैं, भूख और प्यास लगी होती है, और सामने जो पुण्य आत्मा है वो भंडारा कर रहे होते हैं, उनको सब भोजन उपलब्ध है। वो कहता है यम के दूतों को मुझे भोजन करवा दे भाई, वो कहते नहीं तेरे को भोजन नहीं मिलेगा, तेरे को तो लठ देंगे हम, डंडे मिलेंगे, और चल एक बार धर्मराज के पास तेरा अकाउंट वो लेने दे, फिर संवारेंगे तने, जैसे पुलिस वाले कहा करें एक बार रिमांड ले लेने दे फिर देखेंगे तने। तो ये कहते हैं उसको फिर रोता है, बुरा हाल हो जाता है, पछताता है, मुझे पता लग जाता मैं भक्ति करता धर्म करता। अब परमात्मा कबीर जी कहते हैं अच्छे दिन पाछे गए गुरु से किया ना हेत, ई पछतावा के कर या चिड़िया चुगी खेत। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो ऐसे कर्म करता है उसकी आंखें फूट जाती हैं, और जो ऐसे कर्म करता है उसका दायां हाथ कटता है, ऐसे पाप करता है उसका बायां हाथ कटता है, जो ऐसे कर्म करता है उसके पुत्र की मृत्यु होती है। परमात्मा कहते हैं वो तो मर गया, वो जालिया वहां तैयार हो रहा गद्दा बनन और पाछे गुरु पुराण पढ़ावे, वो पहले क्यों पढ़ाया था कि उसको पापों से डरता बुराई से बचता शुभ कर्म करके अपना कल्याण करवाता, थरे सारे उल्टे काम। और फिर क्या बताते हैं नर से तीतु पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये छप्पन भोग कहां मन बोरे कित कुरड़ी चरने जाई। आज मनुष्य शरीर है, आपको कितनी सुविधा भगवान ने दी है, आप भूख लगती है भोजन का दो दो टाइम एक अच्छे भोजन को प्राप्त कर लेते हो, व्यवस्था कर लेते हो, और कभी चाय नजीक रहा चाय पी ली, मिठाई ने दिल करा लड्डू खा लिए, अब तो सब कुछ कर सकते हो, लेकिन भक्ति भी कर सकते हो, सत साधना भी कर सकते हो इसके ना करने से। कहते हैं छप्पन भोग कहां मन बोरे कि तो कुरड़ी चरने जाई, गदा बनेगा कुरड़ियां पर घास खाओगा फिर जा करके। और फिर क्या बताते हैं इसके पश्चात क्या होगा, जैसे पुण्यात्मा भगवान के इस संदेश को आपने हृदय में जचाना पड़ेगा। परमात्मा कहते हैं ये बातें कैण सुनन की नहीं, ये कर पाड़न की है, ये नहीं कि हमने सुना दिया तुमने कहा बहुत अच्छी बात लगी हाँ ऐसा ही है और इस पर असर किया नहीं अमल किया नहीं, इसके अनुकूल चले नहीं तो यूजलेस है सुनना और सुनाना भी। कहते हैं ये बातें कहन सुन की नहीं, ये कर पाड़न की हैं, ये करनी पड़ेंगी तुमने, इनको ध्यान रखा इसलिए बताई जाती हैं। कहते हैं नरसे की तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ओए होए आज आपको कोई तकलीफ होती है डॉक्टर के पास जाते हो अपना दुख बताते हो राहत प्राप्त हो जाती है, और फिर पशु पक्षी बन जाएंगे। परमात्मा कहते हैं जीव जाते वाये बलि जो रटे हरि नाम, और नहीं तो काट के फेंक दियो यो मुख में बलो नीचाम। वैसे तो जीवा बहुत काम की चीज है, बहुत सहयोग देती है भोजन में खट्टा मीठा चाखण में, लेकिन फिर भी उस भक्ति ना करने से यूजलेस बताइए। और भक्ति ना करने से फिर आज तो हम बोल सकते हैं, भगवान का गुणगान कर सकते हैं, और फिर क्या होगा, कुत्ते गधे सुअर बैल बन जावांगे, जीवा भी होगी पर हम जुबान नहीं होगी, बोल नहीं सकते, अपने दुख को नहीं बता सकते, प्यास लगी है या भूख लगी है या कहीं पीड़ा हो रही है। अपनात्मा आपके मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद इन तीनों गुणों का इंजेक्शन एक एक लग जाता है, अर्थात ये त्रिगुणमयी माया को की भांग हम घनी पी लेते हैं, और ये ज्ञान जो भगवान का है ये असर कम करे है, जैसे किसी ने शराब पी रखी हो और उसको कोई बतावे कि तुम्हारे घर में ऐसी दुर्घटना होगी, वो इन सुनता रहेगा आंखें खोल गए, और ना चल सके ना दुख पावे। तो ऐसे आज हमारी ऐसी स्थिति है, ऐसी घटनाएं हो रही है हमारे साथ, और फिर भी हम दूसरों को हो रही हम ऐसे देख रहे हैं, होगी भाई। तो हमने ये देखना चाहिए कि संत क्या बता रहे, इसका समाधान भी है। हमें डर लगना चाहिए, यदि हम होश में आ जावांगे या भांग उतर जाएगी तो फिर होश में आवेंगे, जरा सी बात भी अंदर चुभ हैगी और सतर्क होंगे, और कई दिन तक हर बुराई से बचकर हम सीधा चलेंगे। इसलिए सत्संग सुनाया जाता है, कुछ दिनों में फिर भूल पड़नी शुरू हो जाती है, फिर सत्संग माना चाहिए, फिर ताज़ा हो जाते हो, बैटरी चार्ज हो जाती है, फिर कई दिन तक ये फ्रेश रहती है आत्मा। अपने आत्माओं, इस दास का जन्म किसान परिवार में हुआ, और बैल के साथ जो बीतती है हम खूब परिचित हैं। सारा दिन खेतों में हल में जोता जाता है, समय पर चारा मिलता है, चाहे बीच में भूखा रहो चाहे प्यासा रहो, कति पानी नहीं मिला उसने। और एक घटना ऐसी घटी थी जिसने आज भी हमारी आत्मा को झंझोड़ रखा है, डर लगता है बहुत गुना उन बातों को याद करके। एक बैल था, उसके पैर में एक 1.5 इंच लंबी कील लगी, एक सक्रिय पड़ा था कि गली में फेंक दिया किसी ने, और उसके कैप कट टूट गई थी ऊपर की, वो इतना लंबी कील सी हुआ करे सुवे जितनी। वो अंधेरे में सुबह सुबह खेत में ले जा रहा था, हाली उसके पैर में घुस गई, और वो था थोड़ा तेज चालन का बैल, वो जल्दी जल्दी चला तो उसके अंदर पूरी बैठ गई। अब वो पैर की लंग भी कर रहा था, चल भी रहा था, और एक धारणा होती है देसी हिसाब किताब से, ये कहा करते थे कि बैल अगर लंग करने लग जावे तो उसने रोक के नहीं सारा दिन, क्योंकि उसके कोई नस पे नस चढ़गी, रोकने से फिर वो कंडेम हो जाता। इस दृष्टिकोण से हाली ने सारा दिन काम लिया उसने, कहीं मैं इसको छोड़ दूं इसकी फिर पैर खराब हो जाए, तो वो लग कर डड़े पत्थर वो घुस गई अंदर ने कील, थोड़ी बहुत खून खाना अंधेरे में दिखा ना। तो शाम के समय वो बैल बिल्कुल तीन टांग से आ रहा है, आते ही पड़ गया, सुबह उठा नहीं, मुंह बालिया ना चारा चरिया, पैर सूज गया। तो पहले ऐसे ही ट्रीटमेंट से कोई देसी डॉक्टर रहा था, वैसे पशुओं का काम करता था, उसको बुलाया। अब घुटनों तो ही सोई चली गई उसके, स्वेलिंग होगी। उसने कहा कि इसका बा आ गया पैर में, बा इस कारण से सूज गया, उसके घुटने में बा आ गया, घुटने पर पट्टी बांधनी शुरू कर दी उस बा को खत्म करने की घटना। अब कील लाग रही खुर में पिछले पैर में, और ट्रीटमेंट हो रहा घुटने का। अब वो बोल के नहीं बता सकता मेरे कहाँ पैर में कहाँ दर्द है। अब 1 महीने के बाद वो खुरों के बीच से पक के वो फूटा, वहां से मवाद निकला, जब उसको देखा जाखी करी तेरा गजब हो, ये तो खुरों में कील लगी है इसकी, वो निकलवाई एक चिमटी सी थे, इतनी लंबी कील थी। उसके बाद बैल स्वस्थ हुआ। तो वो बात आज भी याद आती है, वो पहले तपला तून बन रहा था, जो मनुष्य जीवन में था, खावा था और फुर कर दे था, और कोई बतावा था कि ऐसे हो जाएगा तेरे साथ, समझ में कति नहीं आवा थी। तो पुण्यात्माओं आज हमारे समझ में सारी आ रही है, हमारी कि बिल्कुल यह शरीर छूटा ना और यह दुर्गति तैयार धरी है कति बिल्कुल तैयार है। तो इसे डर के हम न रहना होगा। अब ये कष्ट तो इस बैल के जीवन में, और फिर क्या व्रत बताते हैं कि फिर पीछे तू खर की जगह कुरड़ी चरने जाई, टूटी कमर पजावे चढ़े तेरा कागा मास गिलाई। ओए होए, फिर तू गधा बनेगा, कमर टूट जाएगी, वजन रखने से जख्म हो जाएंगे, और उस जख्म के ऊपर बोरा रखा जाएगा डायमंड का, ईंटों का, और जख्म होगा ऊपर से रेत गिरेगा उस जख्म पर ईंटों का, और फिर चलेगा जब ऐसे रगड़ लगती है उस ईंटों की उस जख्म के ऊपर। पुण्यात्माओं, जरा सा यहाँ कोई आपके खरोंच आ जा और उस पर कपड़ा भी लाग जाए, आंखों पानी आता है, और उस समय उस पलातून के जो टीटी पा गया था पीवर लाओ था गुट्टी और बर्बाद कर दिया मनुष्य जीवन, उसके न समझ में ना आई यह बात ऐसे बिगड़ेगी। अब गधा बन गया, ऊपर से कमर टूट गई, उस पर ईंट रखी है, ईंट चलते हुए ईंट ऐसे हिलती है, हिलती है उसको कति खुर्च देती है। शाम के समय उसको कुमार मार देता लठ के बाहर जाए तू, अब तेरी रसोई भी बाहर बनेगी। बाहर क्रोड़ियों पर तो अपना पेट भरता है, काम करता है कुमार के, और वहां कौवे आ जाते हैं उसकी कमर पर बैठ कर उसकी चोंच मार मार कर टूटी हुई कमर को खाते हैं। ये कहर टूटता अपने ऊपर है, ये भगवान बताते हैं, लेकिन हम आज नहीं समझ पाते हैं, और फिर के समझेंगे। तो किसी को आप बताना चाहते हो, जैसे ही आपने ज्ञान हुआ आप तो लग गए लाइन पे, आप अपने मित्र को उसके हमदर्द बनकर बताने की चेष्टा करते हो तो वो अज्ञानता उस कहता है तुम बताओगे बिना भक्ति के गधे बनेंगे कुत्ते बनेंगे, गधा बन जाएगा। तो वो कहता किसने देखा है, देखी जाएगी। अब किसने देखा है और देखी जाएगी, गधा बने पास आप क्या देखोगे, तो कुमार देखेगा, फिर डायमंड का बोरा होगा कमर पर, लठ मारेगा टांगा पे, आपने देखना आती ही देखो, करो भक्ति, ले भगवान का नाम, बुराई त्याग दो और अपना सफल करो इस मनुष्य जीवन को। अब फिर न्यूके किसने देखा है, जैसे कोई अंधा जा रहा था जंगल की तरफ, भयंकर वन की तरफ जिसमें भयंकर जानवर रहते थे, और आंखों वाला उसको कहता है कि सूरदास इधर मत जा, ये रास्ता ठीक नहीं तेरा, इस आगे वन है उसमें भयंकर जानवर हैं, तुझे पाट डालेंगे खा जाएंगे। और वो अंधा यूं के देखी जाएगी, किसने देखा है, अरे जिसने देखा वो बता रहा है कि इधर गलत रास्ता है तेरा। अब वो अंधा आंखें वाली की तो मानने नहीं, अरे आप उसने दिखता नहीं तो मर कुएं में पड़ के फिर जा, देखना क्या होगा। तो ये संत थे, आंखें वाले थे, हम अंधे हैं, इन आंखों वालों ने देखा और बताया है कि ऐसा मत करो ऐसा होगा। गरीब दास सौगंध साहेब की जम देगा बहुत तरासा, वो कसम खाकर कहते हैं कि भगवान की कसम तेरी बहुत दुर्गति हो जाएगी, तो ये बुराई छोड़ दे, ये सत भक्ति कर ले। फिर क्या बताते हैं, प्रेत सला पैदा बिराजे पितरों पिंड भराई, बोर श्राद्ध खान को आए काग भये कलमाही। अब देखो इनके काम, अब ये जैसे अंतिम संस्कार करते हैं जब भी लटोटर करेंगे पंडित जी, और फिर तेर भी कराते हैं कि इसलिए, फिर वो उनके अस्थियां उठा करके ले जाते हैं गंगा में डालने के लिए, किस लिए, किसकी गति करानी है तेरे पिताजी की, वह गति होगी, अच्छा भाई ठीक है, फिर तेरहवीं करेंगे किस लिए, किसी गति हो जाएगी, वह तेरहवीं भी कर दी। फिर महीना, पहले तो बुंडा सांग था, फिर महीना करा करते, फिर प्रत्येक महीने में, और फिर छह माई, फिर एक वर्ष के बाद, और फिर कहते इसके श्राद्ध निकालो। अब तेरहवीं में गति करा दी, अस्थि ठुआई तब गति कराओ थे, तेरहवीं कराई जब करी वह भी गति के लिए, और फिर छह माई वर्षों दी की वो भी गति के लिए, और फिर श्राद्ध शुरू कर दिए गति के लिए, पिंड भरवाए वो भी गति के लिए। अब परमात्मा कहते हैं रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। अपने लला के बाल उतरवावे देखो कैंची ना लग जाइया, अपने लला के बाल उतरवावे देख कैंची ना लग जाइया। एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे भोड़ी सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। अब क्या करते हैं ये भ्रमित किए हुए इन अज्ञानी नीम हकीम गुरुओं के द्वारा क्या धारणा बना रखी है कि अपने बच्चे के प्रथम बाल किसी इष्ट धाम पर जाके कटवाओ, वहां चढ़ा दो उसके मंदिर में। इस उद्देश्य से बुढ़िया लेकर जाती अपने पुत्र वधू और पोते को, वहां नाई बैठा होता इष्ट धाम में, बाहर 2 रुपया में बाल कटते थे, उस इष्ट धाम का नाई 5 रुपये लिया करे, और वहां कोई नहीं देखता क्यों जंगल में इकला हो सब, तो कोई भी जाता है कि ले भाई जल्दी कर। तो बुढ़िया जाती है नाई के पास के भाई नाई मेरे पोते के बाल काट दे, मैंने चढ़ाने हैं माता के मंदिर में चढ़ाने हैं। अब वो काटने लगता है तो इन्हों कहे भाई तू मोटे मोटे काट दे जल्दी सी दे, बहुत जल्दी है। मैंने वो कीता कीता मार के कैंची उसको दे देता, इतने बाल बुढ़िया लेके उन बालों को मंदिर में चढ़ाती है, इष्ट धाम को सौंप देती है पूजा के लिए। और उधर पुजारी बैठा होता है उसके उठाकर उन बालों ने एक बोरी में भरता रहता शाम तक, और सांझ ने उसने उन करोड़ियां पे फेंका हुआ, और कौन सा बैंक में जमा करा होगा उनने, उसने भी करोड़ियां पे फेंकने हुए। वस्त्र चढ़ाकर ही माता कर वो पड़े करोड़ियां पे यानी रूढ़े पे। तो कहने का भाव ये परमात्मा का कि न क्यों समस्या पैदा करो, क्यों अपना समय व्यर्थ करो, इन कित्ते काट के कहीं डाल दो, आने करोड़ियां पे हैं ये। फिर क्या बताते हैं परमात्मा के कच्चा पाका भोजन बना के माता धोकने गईया, उस माता ऊपर कुत्ता मूत वो क्यों ना मर गईया, रे भोड़ी सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। अब हमने देखी हमारी दादी पूड़े बनाया करती, माता धोकांगे माता धोकेंगे, वो कच्चे पाके वो तो पेरा ने कुत्ते ने खाना अंडरस्टूड होता वैसे तो, वो बना के जैसा भी पूड़े चलते हैं। फिर कहा एक चबूतरा बना के उस पर थोड़ी सी ईंट ला रखी होती है, इतनी मंडी ही बना रखी होती है, और कुत्ते तार खड़े रहते हैं आसपास के बुढ़िया नीचे उतरे राम करा माता की सेवा। अब वो तो वहां पूड़े पाड़े चढ़ा के बुढ़िया तो नीचे कदम रखकर कुत्ते ऊपर, पहला तो माता का भोजन खाओ और चलते समय उसको धार लगावे उसका चोटी मुझ कावे। अब परमात्मा कहते हैं जय वह माता इसी समृद्ध थी, कुत्ते की टांग क्यों ना तोड़ दी उसने, अर्थम इस तरह डरो। ये भगत आते हैं ज्ञान तो उनको हो जाता कि अगल साधना है, नाम भी ले लेते फिर भी डर रहे नो करे जिसने फोड़ दिया मंडी ने और मखा उसकी पूजा करेगा फेट ठाके किता है। अब उसने डर लाग गया कदे आ खा जा सिर्फ कुत्ता बुत्ते या खा जाई तुमने, और आप पे 4 ईंट लाई आप पर डरो उनते उन्हें मार मोगरे फेंको एक तरफ ठाके। एक बुजुर्ग सा था वो घना दुखी हो रहा था, सारे धक्के खा लिए थे कहीं रात मिली कोई ना, और किसी ने बनवा रखा था कि थरे पत्थर से दे तुमने इसकी अमैल बना दो, उन्होंने खेता में बनवा रखी एक मड़ी सी। फिर उसने नाम ले लिया तो हमने कहा भी कोई पूजा तो नहीं करनी है, बोला जी मैंने खेत में बना रखी है हमने वो पूजा करते हैं, मैं वो नहीं रखनी है, क्या उसने पाट दो मैं पाट दे। उसने जाके वह पाट के फेंक दी, ईंटे झाड़ जुड़ का अपने रख लिया एक तरफ ने, तो दुखी हो रहा था, फिर सारा मिल गया परमात्मा का। वो फिर आया तो एक और खड़ा था, वो ने बोला ताऊ तने वो पाड़ी दी खेत आई मंडी, बोला पाड़ी दी, बोला क्यों कर पाड़ी, बोला दे का फाड़ी नो उथल दी ठा गए और फोड़ के ठा गए दर्दी के बिजली पड़नी थी उसमें मन ने तलाई थी वह चार ईट। तो पुणात्माओं इस प्रकार हम अज्ञानता के कारण ये डले ढो रहे थे। अब फिर क्या बताते हैं परमात्मा, कहते हैं जीवत बाप गेल लठम लठा ये मुए गंग पोचाया, जीवत बाप गेल लठम लठा मुए गंग पोचाया, जब आवे आसोज का महीना ये कौआ बाप बनैया रे बोड़ी सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया रे बोड़ी सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। कहते हैं जब तक पिता जीवित हैं तब तक उसकी सेवा करते कोन्या, लठम लठा रहे हैं कितने उस ताई गणा दे दिया तो दूसरे की मेर करे से हैं, और मर जाए जब उसने नौकरी भी गति करा कहेंगे गंगा में ले जाओगे, गंगा में पहुंचाओगे। और फिर कहते हैं गंगा में कहाँ पहुंचाते हैं, अस्थि ठा कर गंगा में बहाने जाते हैं। पुण्यात्मा एक भक्त बता रहा था, एक बहन किसी उसकी भगत की जो भगतमती था नाम ले रही थी, और वो नाम नहीं लेवा था कि मैं नाम ना लूं क्योंकि पिताजी की अस्थि उठाकर और गंगा में ले जानी पड़ती है और आपके गुरुजी मना करते हैं। वो इसी बात पर अड़ रहा था कि ना या तो मेरा नहीं समझ में आती और तो मान लेता मैं सारी बातें। अब क्या होता है परमात्मा दया करते हैं, उसके ताऊ जी की मृत्यु होगी यानी दूसरे दादा के, और उसके साथ वो पहुंच गया गंगा घाट पर अस्थियां प्रवाह कराने, उसकी गति कराने के लिए। तो वहां जाते ही एक पांडे बैठे वहां पर, उनका क्षेत्र बट रहा है कि इस क्षेत्र के आओगे, तो वो उस उन वो पांडे है उनका, उनको पता चला भी कहां से आए हो कहां से आए हो, पहले दूर से पूछने लग जाते हैं वो। तो वो कहता है, वो कहने लगा मैं वहां से आए फलाने गांव से उस जिला से। तो वो कहता आ जाओ तुम हमारे हो हमारे, वो दूसरे बाजे आए आ जाओ, वो बुला लिए, वो खोल कर बई सी देखने लगे न बोले जजमान इब कद बहुत दिन माए, उसका माथा ठनका रहे दुश्मन तो हमारी रोज मरण की बाट देखे है। तो इन्हों बोला उस दिन मेरा पेटा भर गया, तो दुष्ट बैठे आ रहे इतने बाट देखे कद मरण तोड़े आवा अड़े जल्दी आवे। उस दिन पीछे फिर उसने उपदेश भी ले लिया और सारा ज्ञान समझ माने पाछे, फिर तो ये बड़का के खेल दिखाई देते हैं, कोई ना खेल लगे। अपने पिताजी को नाम दिलाओ और सत भक्ति कराओ और सतलोक जाओगा जरूर, तय कोई ना नाडन की तो पड़े रही हो, फिर कोई मतलब है कोई नहीं इनका। तो पुण्यात्मा परमात्मा क्या बताते हैं कि कहां से गति कराने लगे थे, फिर पेंड भरवा दिए इसकी गति होगी, फिर न कहीं पित्र बन गया यो अब पित्र बन गया, अब इसकी पूजा करो श्राद्ध निकालो, श्राद्ध निकालने लग गए। अब जब आसुज का महीना आता है उसमें 16 दिन पूजा करते हैं ये अमावस्या से लेकर पूर्णमासी तक, और जिस तिथि को पिता की या किसी भी घर के सदस्य की डेथ हुई थी जैसे 14 ने या छठ ने, तो उस आसुज के उन 16 दिनों में तो छठ या जिस दिन मृत्यु अवस्थ सेलेक्ट हो जाती है, और उस दिन श्राद्ध निकालते हैं और गुरुजी आते हैं भोजन बनाते हैं और कहते हैं पहले भाई तेरे पिताजी को भोग लगाते हैं, छत पर रख देते हैं भोजन, और कौवा आता है, कौवे को भोग लगाना अनिवार्य है श्राद्धों में। और जब कौवा आ गया तो नो कहेंगे देख ले भाई तेरे पिताजी ने भोग लग गया, हो सकता तेरा पिताजी कौवा बन गया हो, अरे तेरा गजब हो, कहां से गति कराने लगे थे कौवा बना के छोड़ दिया रबोड़ी सी दुनिया गुरु बिन कैसे है सरिया। कहते जीवत बाप गे लठम लठा और मुँह गंग पोचैया, जब आवे आसुज का महीना ये कौवा बाप बनैया। रबोड़ी सी दुनिया। पुणात्माओं आदरणीय गरीबदास साहिब जी जिनको गांव छुड़ाने जिला जज्जर के हरियाणा वाले, इनको परमात्मा मिले थे। परमात्मा ने इनको ये ज्ञान फीड कर दिया था इनके अंदर। इनका एक शिष्य था गांव का ही, किसान ही, ये भी किसान थे और वो दिल्ली आता था, बड़ा श्रद्धालु था, दिल्ली आता था दर्शनार्थ। लेकिन एक दिन ना आया। गरीबदास साहिब जी ने पूछा कि बेटा बच्चा क्या बात है, कुशल तो है, आज पहुंचा नहीं, तो कल नहीं आया? तो कहता जी कल मेरे पिताजी का श्राद्ध था इसलिए नहीं आ पाया। अच्छा भाई, और जी कल भी नहीं आ पाऊंगा, क्या कारण? कि कल मेरी माँ का श्राद्ध से। बोला अच्छा भाई ठीक है। अब रोज ज्ञान दिया करते, सारी समझाया करते, काम हुए कि वह, क्योंकि लोक लाज और भूल भुलैया। अब परमात्मा ने गरीबदास साहिब जी ने क्या कहा, बेटा एक काम करना, कल जब तेरी माता जी का श्राद्ध तेरे पिताजी को यानी वो पंडित जी लगा ले ना भोग भाग, तेरी माता जी ने छका ले, जब पूरी तृप्त कर ले, जब तू थोड़ा सा भोजन बाद में मेरे पास ले आइए दो आदमियों का। अच्छा जी ठीक है। अब उन्होंने सोचा गुरु जी कोई खाते होंगे, तो जब वो पंडित जी ने सारा काम कर लिया, पे उसके भोग भाग लगा दिया, कुछ वो कौवे जमा लिए, तब वो दो दो व्यक्तियों का भोजन लेकर के गरीबदास साहिब के पास आ गया। गरीबदास जी बोले वैतरे माता पिता को छका दिया उसने, कहा जी कह था भोग लग गया। बोला अच्छा आ जाते, उसको ले गया खेत में, उन्हीं के खेतों में गरीबदास जी ले गए, कहा जा मेरे साथ साथ। उस आदमी व्यक्ति ने सोचा कि पिता खेतों में कोई व्यक्ति होगा, उसके लिए भोजन ले जा रहे हैं गुरु जी। और उनके खेत में एक छोटा सा जलाशय था, जोड़ी थी, छोटा सा खेतों में होता पशु पशुओं को पानी पिलाने के लिए खोद लेते हैं, और उसके आसपास वो जड़े झाड़ बहुत गणे उग जाते हैं ऑटोमेटिकली। उस झाड़ी से, उस जोहड़ से एक किला दूरी पर, 200 फुट दूरी पर बैठ गए गरीबदास जी, और वहां से आवाज लगाई उसके माता पिता का नाम लेकर, जैसे रबरखा आजा भाई, उसकी पत्नी का भी नाम लेके, आ जाओ तुम दोनों, तेरे पुत्र रोटी लाया, तुम्हारे लिए भोजन लाया है। एक गीदड़ एक गीदड़ी भागी आई और कहा ले बेटा या तो तेरी माँ सरियो तेरा बाबू और दरिन का गरोटी। और वो दोनों ने, वो तो लीला थी मालिक की, और दोनों लागे खाने ने। बोला अरे तेरी माँ छिकी तेरा बाबू दोनों भूखे बैठे थे, तेरी माँ छिकी नहीं तेरा पिता छिका नहीं, और वो तुम नमूरख बना रहा, ये है तेरे माता पिता। तब वो उस व्यक्ति के आवाज समझ में आ गई, गुरुदेव कति भूल लग रही है अपने तैयार, वो तुम्हें मूर्ख बना रहा है। परमात्मा ने फिर उसको बहुत अच्छी तरह समझाया गरीबदास साहिब जी ने कि बेटा बात सुने, जब तेरे माता पिता जीवित थे उस समय दिन में दो दो बार भोजन खाते थे, और तीन तीन बार भी खाते थे, चाय पानी भी पिया करते थे। हाँ जी, अब वो अगर भोजन खाते हैं तो डेली खवाना चाहिए श्राद्ध, डेली करो उसका। एक वर्ष में एक दिन एक बार भोजन करा देने से क्या वो तृप्त हो सकते हैं? फिर 364 दिन क्या खाएंगे वो? अब जवाब तो था नहीं, देखम देखा लग रहे थे गुरुजी बिल्कुल सही हो, आज के बाद कति नहीं करेंगे हम। उस दिन उसने बंद कर दी और संघर्ष किया समाज से। तो कहने का भाव ये है कि पुणात्माओं, ये कति मूर्ख बना रखा अपने को, नीम हकीम गुरुओं ने नकलियां ने अपने पेट भरने का धंधा खोल लिया। एक जीता उदाहरण बताता है दास, मेरे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण कुल में जन्म था उनका, और 16 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या किया, वो हमारे एक कबीर कबीर पंथी संत मिल गए, ज्ञान सुनते रहे सुनते रहे। दो तीन दिन वो गांव में रुका तो खुद को प्रेरणा होगी। 16 वर्ष की आयु थी, खेतों में उनके किसान का काम करते थे वो, उनके घर वाले वो, और वो ब्राह्मणों के भी परंपरा के जो पंडित कहलाते, इनके भी वह खाऊ पंडित न्यारे हो, वो श्राद्ध काटनी है, ये नहीं है, ये तो वैसे वैदाली फीत है इनकी। तो वो पाड़ी जाया करते थे, गायों की पशुओं की पाली जाते थे खेतों में। अब उनका कसूती प्रेरणा होगी जबरदस्त कि भाई तो कुछ भी सांग कोई ना, यू सौदा फिरना ही संतो, यू सौदा फिरना ही, ये लोहे के साथ आओ जाते काया देश रही। मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य ये है कल्याण हो, पीछा छूटे। उनका यह बात घर कर गई। अब उन्होंने सोचा कि यदि मैं ऐसे जाऊंगा तो पीछे पीछे फेरा लेंगे मेरा उड़े, वहां शर्मा दर्द करेंगे गुरु जी के पास। उन्होंने एक स्कीम बनाई, खेतों में बन था, पहले बन बहुत हुआ करते खेतों में आसपास, तो शाम के समय अन्य भी कई पाली साथ से ग्वाले और गुरुदेव हमारे जो थे वो, उनका हरिद्वारी नाम था बचपन का, वो जंगल में चले गए गहरे, बहुत गहरे चले गए। अब शाम का समय हो गया, पालियों ने आवाज लगाई, उन वो नहीं बोले, पालियों ने सोची पता नहीं कित लगा, वो सभी पशुओं को लेकर गांव में आ गए। गांव में आए तो घरवालों ने पूछा भाई हरिद्वारी क्यों नहीं आया, उन्होंने कहा वो तो अंदर चला गया, हमने आवाज बीजी वापस नहीं आया। तो उनको चिंता बन गई कि उस समय वहां बहुत से भयंकर जानवर रहते थे कि कहीं बच्चे को हानि ना पहुंचा दी हो, नहीं तो वापस आना चाहिए था, अगर फ्रेश हो गया हो तो भी। इस डर से गांव के 10-20 व्यक्ति आए, उस टाइम ऐसी थी लालटेन ले रखी मंदे मंदे प्रकाश की, और स्वामी जी ने क्या सोचा, एक कोई ताजा पशु खा रखा था, कोई ऐसे ही शेर ने या किसी अन्य जंगली जानवर ने, और उसके हाड़ पड़े थे, कति चाट रखे थे वे, और वहां डाल दिए वह अपने कपड़े पाट कर, और उनको उसके ऊपर के घेर दिए, कुछ दूर तक घेर दिए डाल दिए। अब अंधेरे का टाइम देखता, ढूंढते 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 देखा रहे, यू तो यू पड़ा भाई, ओहो लड़का तो खा लिया किसी जानवर ने, कपड़े भी ये पड़े, अंधेरा था, करके कट्ठे वो सारे अस्थि और कपड़े बना कर उसकी वह पिंजरी और शमशान घाट पर पहुंचा दिया और फूक दिया, अंतिम संस्कार कर दिया। अब उसके वही शुरू हुए, वो अस्थि ठा कर फिर गए डाल काए उड़े गंगा में गति कराने के लिए, फिर 13वीं करी और फिर महीने शुरू हो गए, फिर पंड भरवाए, फिर श्राद्ध शुरू हो गए, और वो चले गए पंडित चिदानंद जी के पास, वो अपना कल्याण करवा रहे हैं, उधर से उसके पंड भरे जा रहे हैं, उनके श्राद्ध निकाले जा रहे हैं। जब वो हो लिए 107-108 वर्ष की आयु के, वो हमारे पूज्य गुरुदेव जी पंजाब के अंदर एक तलवंडी भाई कस्बा है, उसमें उनका आश्रम, एक मोघा के अंदर आश्रम और एक खन्ना के अंदर आश्रम और एक नजफगढ़ में उनका आश्रम था, दुनिया का उद्धार कर रहे थे। अब इस दास ने उपदेश ले लिया था, इस दास को आदेश भी दे दिया था परमेश्वर मेरे गुरुदेव ने नाम देने का। तो उस समय उनको मालिक जाने क्या प्रेरणा हुई, वो अब तलवंडी भाई से चलकर अपने गांव पैंतावास, बड़ा पैंतावास दादरी के पास हरियाणा में, यहीं के रहने वाले थे, गांव में पहुंच गए। हमें पता चला कि गुरुजी आए हैं, तो दास भी वहां पहुंच गया, 2-4 भक्त मेरे साथ थे, वहां प्रणाम किया बैठ गए। वहां उनकी एक भाभी बैठी थी 90 वर्ष की लगभग, बातचीत चली, गांव में बड़ा अचरज हो रहा था कि हम तो इसको मृत मान रहे थे, ये तो जीवित है, सारा गांव देखना है। हमने फिर उनकी भाभी जी से पूछा कि माई जब हमारे गुरुजी घर छोड़कर चले गए थे तो तुमने पीछे से क्या सोचा। उसने फिर सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे मैंने सुना था, और मैं जब आई यहाँ पर ब्याही तो मुझे इनके श्राद्ध निकालते पाए थे कि इनका एक भाई था वो बे औलादा मर गया, निसंतान मर गया, और निसंतान मरा हुआ तो उसकी सेवा पूजा छीना हो ये बकाया करे तो उसका हक तुम खा रहे हो, तुम्हें दुख दे देगा, जूं कर देगा। तो मैंने अपने हाथों से इसके 70 श्राद्ध काट रखे हैं, और जैसे घर में कोई हानि हो जाती थी, जैसे कोई पशु दूध ना देता और या कोई और पशु मर गया तो हम जाते थे उस ब्राह्मण अपने गुरुजी द्वारा भी ब्राह्मण होता दूसरा उसके पास जाते थे, वो क्या कहता था कि तुम्हारा हरिद्वारी पितर बन रहा है, बे औलादा मर गया, तुम उसकी पांचों लत्ते चढ़ा दो, पांचों कपड़े, और उसके इतने रुपये रख दो, मैं उसका कोई शांति पाठ करूंगा। बोली 10 पद इसका शांति पाठ करवा रखा उन्होंने, और बोला यू खागड़ी बताए जीव है वह तो मजाक करे इसके साथ। तो मैंने कहा भाई अब गीता में लिखा है कि 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कि भूत पूजनीय भूत बनेंगे, पितर पूजनीय पितर, और मुझे यानी मेरी पूजा करने वाले भगवान कहते हो मुझे प्राप्त होंगे। तो इब तो छोड़ दो इस श्राद्ध श्रोध निकालना, तेरी आंखियां का अगर प्रमाण किसे डले डो थे, यो तो दुनिया का उद्धार कर रहे हैं और तुम इसके श्राद्ध निकाल रहे हो, क्या झूठ नहीं है? ने बोली भाई झूठ तो है पर ये के छुट्टे हैं या तो लाग लाग रही है। मगर बाढ़ में जा जान बुझ साची तो जय करे झूठ तय ने अर्ता की संगत है, प्रभु सपने में भी ना दे। अपनात्मा क्योंकि पहले तो हमारे माता ये बुजुर्ग थे वो अशिक्षित थे, अब हम शिक्षित हो गए, अब हम अपने उन सदग्रंथों को स्वयं देख सकते हैं जिसकी 8 महीनों के आकर थे, उस पुराण में ये लिखा है, उस पुराण में ये लिखा है, उसने अपने पितर के श्राद्ध करे, उसने ऐसा श्राद्ध किया। अब उन्हीं पुराणों में आपको दिखाते हैं सच्चाई क्या है। ये मार्कंडेय पुराण एक रुचि नाम का पंडित था, ब्राह्मण था, और उसने वेदों को समझा पढ़ा कि अभी मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही होता है। इस उद्देश्य से उसने ना ब्याह करवाया और ना कोई घर बनाया, भक्ति करने लग गया, अपना जंगल में रहता था, ना कोई झोपड़ी बना रखी थी, अपना फल आहार करता था, भक्ति करता था। तो जब वो 40 साल का हो गया, 40 वर्ष का, उसके पिछले चार पितर दिखाई दिए, पिताजी, दादाजी, दादाजी का पिताजी और फिर पर पिताजी, चारों भूत बन रहे हो पंडित जी। उन्होंने दिखा, उनको दर्शन दिए आकाश में और कहा बेटा तूने ब्याह क्यों नहीं कराया, ब्याह करा के हमारे श्राद्ध निकाल, ये बड़ा अच्छा कर्म है, श्राद्ध निकालने चाहिए, गृहस्थी का तो बहुत बड़ा धर्म है, अतिथियों की सेवा करे, पितरों की सेवा करे, बड़ा पुण्य होता है, पुण्य में लोक प्राप्त होते हैं। अब वो वेदों के अनुसार बात कर रहा था तो रुचि ऋषि ने कहा पितामहो वेदों के अंदर तो इस कर्म कांड को ये श्राद्ध श्रोध निकालना अविद्या का है, मूर्खों की साधना। और वो ब्राह्मण थे, वो भी पंडित थे, और वो भी कह रहे हैं कि हाँ बेटा है तो ये अविद्या, वेद में तो ऐसा ही लिखा है। और फिर नुको नहीं बेटा ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा करना चाहिए, पितर नो दे देते हैं, पुत्र आप भूखे मर के दे देंगे बेटा। अब क्या था कहने का भाव ये है कि आखिर में वो अपने कैसा बनवा दिया, भूत पूजना शुरू करवा दिया, भूत वो बनेगा। अब प्रमाण दिखाता हूँ, देखो ये है संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण सचित्र मोटा टाइप की ओर हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 243 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं, ये है संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण पृष्ठ 242 से शुरू करेंगे, 242 पे रोच्य मुनि की उत्पत्ति, रोच्य मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडे जी कहते हैं, ब्रह्मन पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे, घूमया करते। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी और न अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवर्ती में रहते देख कर उनके पितरों ने उनसे कहा। पितर बोला, बेटा विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कर्म है, उसे तुमने क्यों नहीं किया? इन्होंने कहा, तुमने ब्याह क्यों नहीं करवाया, हमारे श्राद्ध निकाल लो। अब गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं पितरों ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है और वह सभा के उच्चारण से देवताओं को और सवधा के उच्चारण से। अब जिसे उन्हें डले डो रखे थे हुए फिर बताओ है पितरों का को तथा अन्न आदि बलि वैश्वदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। बेटा हम ऐसा मानते हैं, ये तो कहते हमारा मत है, ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में क्लेश ही क्लेश उठाना पड़ेगा तथा मृत्यु के बाद भी तुम्हें दूसरे जन्म में भी क्लेश ही भोगने पड़ेंगे। रुचि ने कहा, पितरगण, अब देखो ये देखो ये सारे भूत दिखाई दे रहे हैं, ये चारों भूत दिख गए ऊपर, रुचि उनसे बात कर रहा है। अपुनात्मा अब रुचि कितना अच्छी बातें कह रहा है कि पितर, रुचि बोला, परिग्रह मात्र अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है। अब ब्याह करवा लिया तो 36 दंडट हो जाएंगे मेरे जी ने, लेकिन उन्होंने अपने स्वार्थवश ये बका लिया तथा उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। मन और इंद्रियों को नियंत्रण रखकर जो ये आत्म संयम किया जाता है वही वह भी परिग्रह करने पर मोक्ष का साधक नहीं होता। ममता रूप कीचड़ में सना हुआ होने पर भी यह आत्मा परिग्रह शून्य चित रूपी जल से प्रतिदिन दोहरा जाता है। पितर बोले, बेटा जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षरण करना उचित है, पर किंतु जिस मार्ग पर चल रहे वो तो मोक्ष मार्ग है। देख कितनी बढ़िया बात कहे कि तू तो मोक्ष प्राप्त कर लेगा और ये फिर उल्टा खींच के लाओ अपने कीचड़ में, वो तो मोक्ष मार्ग है। रुचि ने पूछा, पितामह हो वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है, ये भूत जो सलाह तुम मुझे दे रहे हो वो कर्म तो अविद्या है, मूर्खों का कार्य बताया गया है, फिर क्यों आप मुझे उस मार्ग पर लगाते हो? पितर बोले, ये सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं। फिर टट्टू रह गया, बता फिर कह रहेगा वेद को वो भी मानक ऐसा ही सत्य है। और रुचि उनसे रो ही रहा है कि तुम मुझे क्यों नरक क्या भागी बना रहे हो, वेद में तो इसको अविद्या मूर्खों की पूजा बताया है। और परमात्मा कहते हैं, वेद पढ़े पर वेद न जाने ये बातें प्राण 18, अर जड़ को अंधे पत्ते खोआवे यो भूल गया सृजनहारा। अब ये नकली संत कहते हैं, ये श्राद्ध निकलवाणी क्या करें, कहते हैं एक बार वनवास में थे श्री रामचंद्र जी और सीता जी, उसके पिता के श्राद्ध आ गए और सीता ने वहां श्राद्ध किए थे उनके जंगल में और उसके सारे पूर्वज दिखाई दिए थे, उनके सारे पूर्वज वहां आ गए थे और सीता सुकुचा गई थी, उन्हें देख कर शर्मा गई। बड़े बढ़िया इंजेक्शन लाओ है ये। अरे भले आदमियों, तुमने गलत साधना करवा के भूत पुजवा के सारे भूत बनवा दिए, वो भूत बने दिखेंगे और के दिखेंगे, कौन से स्वर्ग में चले गए या सतलोक चले गए? अब जैसे रुचि के ये चारों ये पितर दिख गए, ये भूत बन रहे सारे, उसने लोग तो ब्याह करवा ले, हमारे श्राद्ध निकाल दे, मर गए भूखे। अपने आत्माओं एक सूक्ष्म शरीर होता है शरीर का, जीव का ये स्थूल तो यहाँ रह जाता है, सूक्ष्म शरीर में जब तक इसकी देह परिवर्तित नहीं हो जाती, कोई दूसरा शरीर नहीं मिलता, तभी तक ये उस एज इट इज स्वरूप में रहता है। और इसको ये आभास रहता है कि मैं ऐसे तृप्त हो जाऊंगा, मुझे ऐसे सुख मिल जाएगा, तो ये इसकी भ्रमना होती है, इसका एक भ्रम होता है। तो उसी आधार से ये सब ऊपर भूत पर नौके ने दिखाई देगे रुचि को, और उसको कहते हैं तू ब्याह करवा ले और हमारे श्राद्ध निकालना। और वो नाट्य क्यों, ये तो पाप में भागी बना रहे हो मुझे, ये अविद्या का कार्य है। और वो खुद भी मानते हैं कहा इसमें कोई तनिक भी मिथ्या नहीं है, है तो ये अविद्या ही। और फिर भी नो को ना ऐसा है ना, पितर यू कर देते हैं, पितर ये कर देते, वो राम हुआ फिर सुना दी उन्होंने, शिकली शुरू कर दी सुनानी, और रुचि को मूर्ख बना दिया। आखिर में उसने ब्याह करवाया और फिर उस पंक में उसी गारा में उसको भी डाल दिया। तो पुण्यात्माओं क्या बताते हैं, जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। यदि आप जी सतगुरु की संगत करते, यानी तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर सत साधना करते, ये सकल कर्म कट जाई, भूत भी नहीं बनना था और ना ही कित कोई क्रिया नहीं करनी थी, और सभी पापों का कर्मों का नाश होकर और अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। अमरपुरी पर होय होय, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत बतावेगा उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स को, सभी छंद को, विभागों को और पूरे ज्ञान को। तत्वदर्शी संत के मिलने के पश्चात उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान रूपी अंधकार को काट के, यानी अज्ञान को समझ कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। तो यहां क्या बात बता रहे हैं गरीबदास साहेब जी, कि जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। अमरपुरी पर सतलोक में जाते तुम, जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आता। परमात्मा क्या बता रहे हैं, प्रेत शिला पै जा बिराजे पितरों पिंड भराई, बोहर श्राद्ध खान को आये काग भये कलमाही। अब क्या बताते हैं गरीबदास कबीर साहब कह रहे हैं के भूत जुनी जा छूटे है पिंड प्रदान करंत, गरीबदास जिंदा कहे नहीं मिले भगवंत। अब जैसे ये दास जब सर्विस करता था, वहां एक सुपरिटेंडेंट था, हम तो उस टाइम छोटी उम्र के थे, वो लगभग 52-53 वर्ष की आयु का था, वो रिटायर होने वाला था। ऐसे चर्चा चला करती थी, वो कहता है कि मैं एक बार प्रेत चला है वहां पर, इसमें गया मैं वहां पर, तो वहां गया मैं, जब वहां पहुंचा तो प्रेत शिला को देखकर मुझे ऐसा याद आया जानो जैसे मैंने यह बहुत बार देख रखी है, खूब देख रखी है, भूत बने कपड़े धक्के खाए होंगे इतने। तो कहने का बाबा परमात्मा कहते हैं कि प्रेत शिला पर जा बिराजे फिर पितरों पिंड भराई, और बहुत श्राद्ध खान को आगे काग बहे कलमाई, कहते पिंड भरवाने से भूत जुनी छूटगी और फिर बन गया गधा, बता के टट्टू गति करा दी उसकी। तो हम नो बहका रखे थे, इसका समाधान बता रहे हैं, जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद पराणी ही तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे महर्षि महर्षि को उसने भी 84 लाख योनियां भोगनी पड़ी, जो साधनाएं तुम कर रहे हो इससे, और तुम ही क्या बुनियाद प्राणी, ऐसे महापुरुषों के साथ या दुर्गति हुई इन साधनाओं से, तो तुम ही क्या बुनियाद प्राणी, तो पंडा पंथ पकड़े वो। सुखदेव ऋषि अपनी आत्मकथा बताते हुए कहते हैं, एक बार मैं गधा बन गया, 84 लाख योनियां भोग रहा था, अंधा हो गया, अंधा गधा, मालिक ने मारे लठ निकाल दिया घर से, एक पगडंडी के ऊपर मैं ऐसे अटकल से लगाता हुआ जा रहा था, आगे एक नाला था थोड़ा सा 2-3 फुट का, और मुझे दिखाई नहीं दिया, मेरे अगले पैर उसमें जाने लगे, मैंने छलांग लगानी चाही तो ना आगे गया ना पीछे, बीच में फिट हो गया उसके, आगे मुंह टिक गया, पीछे से पीछा अड़ गया, उसमें मैं फिट हो गया गति और पैर लटके नीचे। अब वहां इक्का दुक्का व्यक्ति जाता था, मुझे किसी ने नहीं निकाला, और वो रास्ता था आने जाने का, पहले तो उस पर से कूद कर निकल जाते थे व्यक्ति, फिर मेरी बनगी पुड़ी, मेरे कमर पर पैर टेके पार हो जाए, मुझे नहीं निकाला। हफ्ते 10 दिन में भूखा प्यासा भुगत के तड़फ के वहां मेरे प्राण निकले। अब परमात्मा कहते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती, वो बना पजावे खरवो खरवा ने गधा, और तेरी क्या बुनियाद पराणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। अब तेरी की औकात है भोले व्यक्ति, आम जन साधारण, तू हम जो रास्ता बताते हैं वे ऑफ वर्शिप, इस मार्ग को पकड़े, तो उससे क्या हो गया कि जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई, स्वरत नरत मन पवन पियाना शब्द शब्द समाई, गरीब दास गलतान महल में मोहे मिले कबीर गुसाई। अब गरीब दास जी कहते हैं, मुझे परमात्मा कबीर जी आए थे स्वयं सतलोक से चलकर, उन्होंने हमें ये मार्ग दिया जो तुम्हें बता रहा हूँ, ये गॉड गिवन ज्ञान है और इस पर विश्वास करो आपका मोक्ष हो जाएगा, और वहां क्या मिलेगा, चार मुक्ति जा चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। बोलो सतगुरुदेव सत्संग।